समागत देवियों और सज्जनों, गीता के 12वें अध्याय पर त्रिदिवसीय प्रवचनमाला का आज तीसरा और अंतिम प्रवचन होने जा रहा है। विगत दो दिनों में हमने 12वें अध्याय की भूमिका पर विचार किया कि 11वें अध्याय के साथ इस अध्याय का क्या संबंध है, और फिर उसके बाद अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उनके कथन को समझने की हम चेष्टा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण दोनों मार्गों की सार्थकता हमारे समक्ष रखते हैं। ज्ञान मार्ग सार्थक तो है ही, भक्ति के द्वारा भी हम उसी तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इस बात पर बहुत अधिक जोर वे दे रहे हैं अर्जुन के संदर्भ में, क्योंकि अर्जुन के मन में कहीं पर ज्ञान के लिए इसलिए खिंचाव है कि उसे ऐसा लगता है ज्ञान के रास्ते जाने से कर्म का जो झगड़ा है, कर्म की जो झंझट है, उस झंझट से उसे संभवतः मुक्ति मिल सकेगी। परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस मनोदशा को पूरी तरह से जानते हैं, वे बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए अर्जुन जिससे भक्ति पथ का कायल हो और कर्म में लगे, इस दृष्टि से अर्जुन को उत्साहित करते हैं। अभी आपने श्री मंत्री जी से जो कुछ शब्द सुने गीता के संदर्भ में, अत्यंत संक्षेप में उन्होंने बहुत सुंदर बातें कही हैं। यह ज्ञान मूलक है, भक्ति प्रधान है और कर्मयोग है। ऐसा कर्मयोग है जिसका आधार तो ज्ञान है और जो भक्ति से सर्वत्र ओतप्रोत है, यह गीता है। तो यहां पर उसी तत्व को भगवान कृष्ण रखते हैं सामने। ज्ञान तो आधार बना रहेगा और यहां पर वही चर्चा करते हैं अर्जुन के प्रश्न के संदर्भ में कि भक्ति के रास्ते से चलने वाला मुझे बड़ा प्रिय है, ऐसा कह करके मनोवैज्ञानिक ढंग से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। अर्जुन ने पूछा था ये दो रास्ते हैं, ज्ञान का रास्ता, अव्यक्त की उपासना का रास्ता, और दूसरा है जो व्यक्त है, सगुण साकार की उपासना का रास्ता। अब इन दोनों में योग वित्तम कौन है? भक्ति योग का जानकार, ज्ञान योग का जानकार, इन दोनों में श्रेष्ठ जानकार कौन है? भगवान ने इस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं दिया, यही कहा कि जो अपना मन मुझ में आविष्ट कर देता है, नित्य युक्त होकर के मेरी उपासना करता है, पराश्रद्धा से युक्त होता है, उसको मैं श्रेष्ठ जुड़ने वाला अपने आप से मानता हूं अर्जुन, यह कहा। अब उन्हें उत्तर देना है ज्ञान पक्ष का भी, क्योंकि अर्जुन ने वह प्रश्न तो किया ही है, तो भक्ति के बारे में ऐसी बात कहकर के वे यूं कहते हैं मानो ज्ञान आनुषंगिक है, मानो वह गौण हो, इस ढंग से उत्तर दिया कि ये जो अक्षर और निराकार की उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वे भी अंततः मुझे ही पाते हैं। मानो बल भक्ति मार्ग पर ही रखा, फिर भी अर्जुन के मन में ज्ञान के लिए किसी प्रकार आग्रह पैदा न हो, इसलिए एक बात कहना वे भूलते नहीं, परंतु ज्ञान के रास्ते में क्लेश बहुत है अर्जुन, क्योंकि जब तक देहात्म बोध बना हुआ है, देहाभिमानी व्यक्ति ज्ञान के रास्ते से सुखपूर्वक चल नहीं सकता है। परंतु जो लोग भक्त हैं, सब कर्म मुझ में संन्यस्त कर देते हैं, मेरे परायण हैं, अनन्य योग से मेरा ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, उनके लिए मैं स्वयं नौका बनकर के आ जाता हूं मृत्यु रूपी संसार सागर को पार कराने के लिए। इसलिए अर्जुन, तो अपना मन और बुद्धि मुझ में ही निविष्ट कर, मन को भी मुझ में रख दे, बुद्धि को भी मुझ में डाल दे। ऐसा करने से तू देखेगा तो संपूर्ण रूप से मुझ में ही आकर के निवास करेगा। मानो भक्त पूरी तरह से ईश्वर से ही ईश्वरमय बन जाएगा, यह कथन है भगवान श्री कृष्ण का। श्री राम कृष्ण के जीवन को देखें तो हम इन श्लोकों को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मन और बुद्धि, इन दोनों को हम भगवान में रख दें, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है। यह तात्पर्य श्री राम कृष्ण के जीवन के माध्यम से स्पष्ट रूप से ध्वनित होता है। फिर इसके बाद भगवान कहते हैं कि संभव है अर्जुन, तू पूरी तरह अपने चित्त को मुझ में दफनाने में समर्थ न हो, समाधान मानो दफना देना, मेरे भीतर में डाल देना, तो चित्त को समाहित करने में तू इस प्रकार से समर्थ न हो, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाने की इच्छा कर। अभ्यास योग कल हमने देखा था, यह अभ्यास भी यदि तेरे लिए कठिन मालूम पड़ता हो तो मेरे निमित्त कर्म कर, मानो कर्म का कर्तापन अपने पास मत रख, तू मुझे दे दे, कर्म करता जा। जैसे मुनि साहूकार के लिए ही कर्म करता है, हर समय कर्म के मध्य में साहूकार का ही चिंतन होता है, सेठ को हरदम वह स्मरण में रखता है, उसी प्रकार जीवन के कर्म करता हुआ तू मेरा स्मरण रख, यह मेरा कार्य है, तू यंत्र है, मैं यंत्री हूं, इस भाव को लेकर के तू जीवन के कर्म कर, उससे भी बनेगा। यदि इसमें भी तू समर्थ नहीं है, कर्तापन तुझसे छूटता नहीं है, ठीक है, कर्म कर, कर्तापन को रहने दे, फल को मुझे समर्पित कर दे। कई बड़े बड़े ह्यूमनिस्ट होते हैं, मानवतावादी होते हैं, उनके भीतर में कर्तापन रहता है कि मैं यह कर रहा हूं समाज सुधार का कार्य, समाज की सेवा का कार्य, परंतु वह जो कर्म का फल है अपने लिए नहीं लेते, वे समाज को समर्पित कर देते हैं, यह मानवतावादी व्यक्ति हुआ। भक्त क्या करता है, भक्त फल को भगवान को ही समर्पित कर देता है, समाज भगवान का ही विराट रूप है, वह ईश्वर बुद्धि से ही मानव फलों को समर्पित करता चला जा रहा है। तो यह भी वहां पर कहा गया कि सर्व कर्म फलस्त्यागम, फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। और फिर उसके बाद उन्होंने बारहवें श्लोक में एक बात कह दी, बात कुछ उल्टी लगती है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग, त्यागात शांति ही अनंतर। क्रम मानो बदल गया है, पहले अभ्यास योग को कितना ऊंचा स्थान दिया था, ऐसा लगता था कि कर्म फल त्याग सबसे निचली अवस्था है, यह न जमे तो वह, मन और बुद्धि दोनों को न दे सको तो अभ्यास योग करो, वह न सधे तो मेरे निमित्त कर्म करो, वह भी नहीं सधे तो कर्म फल मुझे अर्पित करो। तो कर्म फल का त्याग सबसे नीचे। और यहां पर मन में ऐसा लगता है कि कर्म फल त्याग क्या सबसे निचली साधना है, तो हमने कल कहा था वह निचली साधना नहीं है, बल्कि कर्म फल त्याग कर पाना यह भी बहुत ऊंची साधना है। इसीलिए यहां पर कर्म फल त्याग को सबसे ऊंचा स्थान दे रहे हैं 12वें श्लोक में। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेयस्कर है, ज्ञान से ध्यान बढ़ करके है और ध्यान से कर्म फल त्याग बढ़ करके। कर्म फल त्याग जीवन में हो जाए तो तुरंत शांति मिलती है, यह यहां पर कहा गया। इसको कूट श्लोक कहा गया है। महाभारत में लगभग 100,000 श्लोक हैं और कूट श्लोकों की संख्या है 8,800, ऐसा ये गवेषणा करने वाले लोग मानते हैं। ये कूट श्लोक क्या हैं? इन कूट श्लोकों को समझने में कुछ कठिनाई तो होती है। अलग अलग व्याख्याकार भिन्न भिन्न प्रकार से इन कूट श्लोकों का अर्थ करते हैं। आपको शायद वह कथा मालूम होगी कि व्यास देव से कहा गया महाभारत लिखने के लिए। व्यास देव ने कहा कि ठीक है, मैं लिख तो दूंगा, पर मैं सोचूं भी, छंद भी बनाऊं और मैं लिखता भी जाऊं, ये दोनों काम मैं एक साथ नहीं कर सकता। यदि कोई मुझे आशुलिपिक मिल जाए जो मैं बोलता जाऊं लिख लें, तब तो मैं यह कार्य कर सकता हूं। नारद जी ने ही यह सुझाव दिया और नारद जी ही कहते हैं कि ठीक है, गणेश जी आपके लिए आशुलिपिक बन सकते हैं। कहा कि ठीक है, आप ही राजी कीजिए। गणेश जी के सामने प्रार्थना रखी गई और आप पढ़ते हैं सुनते हैं कि गणेश जी राजी तो हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। कहा कि मुने, आप जो कहेंगे मैं लिखने के लिए तो तैयार हूं, पर मेरी लेखनी कहीं पर रुके मत। लेखनी रुकी कि मैंने लेखनी धर दी, फिर नहीं लिखूंगा, बस लिखना ही चाहिए, लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। व्यासदेव कुछ देर सोचते रहे, आखिर छंद बनाने में श्लोक बनाने में भी तो समय लगेगा। उन्होंने कहा सोच करके, ठीक है गणेश जी, आपकी शर्त मुझे मान्य है, पर आप भी मेरी एक शर्त को स्वीकार करें। क्या शर्त है आपकी? आप जो भी लिखेंगे वह समझ बूझ करके लिखेंगे, समझ में नहीं आएगा और फिर भी आप लिख गए, बात ठीक नहीं रहेगी। उन्होंने भी शर्त मान ली और दोनों ने लिखना और लिखाना शुरू किया। और हम पढ़ते हैं कि 10-12 श्लोक व्यास जी बनाते थे और एक श्लोक ऐसा बना देते थे थोड़ी देर के लिए, सोचने के लिए उन्हें कलम रख देनी पड़ती थी गणेश जी को। ऐसे 10-12 श्लोक के बाद जो है उनको कूट श्लोक कहा है। तो ठीक 10-12 श्लोक के बाद ही वे कूट श्लोक नहीं मिलेंगे, ठीक उसी क्रम में, पर ऐसा माना गया है कि 8,800 कूट श्लोक हैं। मैंने एक ग्रंथ पढ़ा था जिसमें यह लिखा गया था कि 8,800 ऐसे श्लोकों को अलग करके किताब के रूप में छापा गया है, पर वह किताब अभी तक मुझे मिली नहीं है। मैं देख नहीं पाया हूं कि वे 8,800 कूट श्लोक कौन से हैं, पर इसकी व्याख्या में 12वें श्लोक की व्याख्या में कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि कूट श्लोक है। और लगता भी है कि कैसा उल्टा सुलटा कर दिया, पहले अभ्यास योग को ऊपर उठा दिया और अभी अभ्यास को सबसे निचला स्थान दे दिया। तो कल हमने कहा था कि इसको समझने का एक तरीका यही है कि जैसे कर्म और कर्मयोग में अंतर है, वैसे ही अभ्यास और अभ्यास योग में अंतर है। माने यह जो अभ्यास है, जो बात यहां पर कही गई, यह प्रारंभिक साधना। जैसे हम अभ्यास करते हैं तो क्या करते हैं? हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, अर्घ्य प्रदान करते हैं, नैवेद्य देते हैं, व्यंजन करते हैं, यह हमारी पूजा का क्रम है। तो हम कर किए जाते हैं, इसको कहते हैं अभ्यास। ज्ञान क्या है? यह जो हम पूजा कर रहे हैं, पूजा का तत्व क्या है? यह जो बौद्धिक ज्ञान है पूजा के पीछे, इसको यहां पर ज्ञान कहा गया। और यह कहा गया कि ज्ञान अभ्यास से बढ़ करके है, और यह तो बहुत स्वाभाविक बात है। मान लीजिए मैं व्यंजन करता हूं, घंटी बजाता हूं, आरती दिखाता हूं, लोग पूछते हैं कि घंटी बजाने का क्या मतलब? हम ही पहले अपनी दादी से मजाक करते थे, तुम्हारा भगवान सो गया है, घंटी बजाने से जागता है, क्यों घंटी बजाती हो? उत्तर नहीं दे पाती थी, पिताजी से पूछने का साहस तो नहीं होता था, पर प्रकारांतर से हमने पूछ ही दिया कि घंटी क्यों बजाते हैं, क्या भगवान सोए रहते हैं? वे भी उत्तर नहीं दे पाए, और बहुत दिनों तक उत्तर मिला ही नहीं। बाद में जब पूजा तत्व इत्यादि ऐसा कुछ पढ़ा, तब मालूम पड़ा कि हम जो दीप जलाते हैं, यह सब करते हैं, क्यों करते हैं? मानो हम भगवान की पूजा करते हैं पंच तत्वों से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांच तत्व हैं, और इन पांचों तत्वों के माध्यम से हम ईश्वर की पूजा करते हैं, व्यजन करते हैं मानो वायु तत्व से पूजा की, घंटी बजाते हैं मानो आकाश तत्व से पूजा की, क्योंकि आकाश का गुण है शब्द, दीप दिखाते हैं मानो हमने अग्नि तत्व से पूजा की, जल प्रदान करते हैं जल तत्व से पूजा है। तो भिन्न भिन्न प्रकार से हम वहां पर सुगंधित वस्तुएं जलाते हैं मानो वह पृथ्वी तत्व से पूजा है। ये पंच तत्वों से हम भगवान की पूजा करते हैं। जिन पंच तत्वों से संसार बना है, हम प्रतीक रूप में प्रभु से कहते हैं, महाराज हम इन पंच तत्वों से तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। ये पंच तत्व हमारे सब के सब मानो शुद्ध हो जाएं, यह भावना पूजा के पीछे है। तो ऐसा जब ज्ञान आता है तो पूजा हमारे लिए मात्र यांत्रिक नहीं होती है। ज्ञान न रहे तो पूजा मात्र यांत्रिक होती है। घंटी बज रही है, दीप घूम रहा है और मन भी साथ में घूम रहा है। कहां घूम रहा है यह आप सभी जानते हैं, उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमने इसे तो जाना अभ्यास को, पर अभ्यास के पीछे जो ज्ञान होना चाहिए उसका बोध नहीं है। तो कहा गया कि ज्ञान उससे बढ़कर के है। तो अभ्यास हम जो भी करें साधना का, उसके पीछे ज्ञान होना चाहिए। अब एक व्यक्ति थे बूढ़े वकील, छिंदवाड़ा में एक बार मैं गया, आए और उन्होंने कहा कि लगभग 13-14 वर्षों से मैं साधना कर रहा हूं, मैं कुछ साधना करता हूं पर मेरी कोई प्रगति नहीं हो रही है। मैंने कहा कि ठीक है, आप सुबह आ जाइए, भोर में अकेले में आपसे चर्चा कर लेंगे। 63 वर्ष की उम्र थी तब जब वे आए, बातचीत की, मैंने कहा साधना आप किस प्रकार करते हैं? उन्होंने बताया कि कैसे वे साधना करते हैं, धौंकनी के समान सांस इधर उधर करते हैं, यह सब करते हैं। कितनी देर करते हैं? 1 घंटा। अब 1 घंटा करते हैं उससे क्या मिलेगा? हम यदि शरीर को धौंकनी के समान चलाते रहें, जोरों से सांस इधर से उधर करें, तो वहां पर साधना की कोई गति तो है नहीं। हमने केवल एक भौतिक व्यायाम मात्र किया है, उससे कुछ भौतिक लाभ हो सकते हैं, पर उससे तो मन को कोई खाद्य मिलेगा नहीं। तो इसीलिए यहां कहा गया कि अभ्यास से बढ़कर के है ज्ञान। हम पूजा करते हैं तो पूजा से बढ़कर के है पूजा तत्व का बोध, और पूजा तत्व भी हमने जान लिया तो कहते हैं उससे ध्यान बढ़कर के है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं दीप भगवान के सामने घुमा रहा हूं, घंटी बजा रहा हूं, मुझे बोध तो है, पूजा तत्व का ज्ञान तो हो गया कि मैं आकाश तत्व से पूजा कर रहा हूं घंटी बजा करके, अग्नि तत्व से पूजा कर रहा हूं दीप घुमा करके, परंतु मन यहां न होकर के इधर उधर भागता रहे तो भी मुझे कोई लाभ। ज्ञान है, अभ्यास चल रहा है और ज्ञान भी है पर ध्यान नहीं है, मन मेरा निविष्ट नहीं है, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं कि प्रभु मैं तेरी पूजा कर रहा हूं अग्नि इत्यादि तत्वों से, तो इसीलिए कहा गया कि ध्यान ज्ञान से भी बढ़ करके है। बहुत सरल है समझने में, ध्यान में मनोनिवेश होता है तो ध्यान उससे भी बढ़ करके है। और कहा गया कि ध्यान से बढ़ करके है कर्मफल त्याग, इसका मतलब क्या है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति भी कर्म फल की आसक्ति से दब जाता है, कर्म किया है फल तो मुझे मिलना चाहिए कम से यश के रूप में, यह मनुष्य चाहता है। मैं कर्म फल को अपने लिए भले न चाहता हूं पर यश के रूप में तो मिले, वह भूल जाता है कि यश भी तो कर्म फल है, कि मैं एक सेवा का कर्म करता हूं और ठीक है सेवा का कर्म करता हूं तो सेवा कर्म से जो फल मिलता है दूसरों को बांट देता हूं, बहुत ठीक है, परंतु यदि उस सेवा कर्म से मैं यशो लाभ करना चाहूं तो मैं भूल जाता हूं कि इस कर्म को मैं भुना रहा हूं, यह मैं भूल जाता हूं, मनुष्य भूल जाता है, और इसीलिए ऐसा सेवा कर्म भी उसके लिए आध्यात्मिक दृष्टि से लाभकारक नहीं होता, भौतिक दृष्टि से उसकी प्रतिष्ठा करा देगा, लोगों में नाम होगा कि बहुत सेवा भावी है, उसे यश मिलेगा प्रशंसा मिलेगी, परंतु उस सेवा कार्य के द्वारा जो आध्यात्मिक उन्मेष उसके जीवन में होना था वह नहीं हो पाता, भगवान के करीब जो सेवा कार्य ले जाता वह नहीं ले जाता। तो यहां पर यही कहा गया कि ध्यान से भी बढ़कर के कर्म फल का त्याग, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभ्यास करें, पहली बात अभ्यास से बढ़कर के है ज्ञान, ज्ञान से बढ़कर के है ध्यान, ध्यान से बढ़कर के है कर्म फल त्याग, और कर्मफल त्याग से बढ़कर के है कर्तापन का त्याग, कर्मफल त्याग में भोक्तापन का त्याग है, कर्तापन बाकी है, इसीलिए यशोलिप्सा हो सकती है, कर्तापन जहां पर रहेगा तो सुनने की इच्छा होती है कि लोगों ने कैसा कहा, हम अगर एक भाषण दें तो भाषण देने के पीछे दो प्रकार की भावनाएं हो सकती है, या तो मैं साधना की दृष्टि से भाषण दूं, यह भी एक कर्म है और मैं इसे कर्म मानता हूं, प्रभु केंद्रित कर्म, यह मेरी साधना, इसके माध्यम से प्रभु की पूजा, मानो कर्तापन भी मैं ईश्वर को सौंप दूं तो यह भी एक दृष्टि हो सकती है, और कर्तापन को न सौंपूं और यह कहूं कि इस भाषण के द्वारा जो फलाफल है प्रभु तुम्हें समर्पित है, मैं फल नहीं लेना चाहता, तो कर्तापन जब तक बाकी है, मैं भाषण दे रहा हूं जब तक बाकी है, तब तक यह सुनने की इच्छा बनी ही रहेगी कि लोग कहें कि भाषण कैसा हुआ, सूक्ष्म रूप से कहीं न कहीं अंतराल में यह वृत्ति कार्य करती रहेगी, और यह जो वृत्ति कार्य करती रहती है वह साधक के लिए अंतराय है। तो इसीलिए यहां पर यह कहा गया कि कर्मफल त्याग ठीक है, कर्म फल त्याग की अवस्था में पहुंचते हो, भोक्तापन का त्याग कर सकते हो तो कर्तापन का त्याग करना सहज हो जाता है, भोक्तापन को त्यागा, भीतर में कर्तापन मौजूद है और थोड़ी सी चेष्टा की तो कर्तापन भी छूट सकता है, और जब कर्तापन भी छूट सकता है तब तो अभ्यास योग बहुत जल्दी जमता है, यह जो मन भागता है हम लाकर के उसे अपने इष्ट में निविष्ट करते हैं, तो जब हमने कर्तापन और भोक्तापन दोनों को त्यागा और इस त्यागने में जैसे जैसे हम सिद्ध होते हैं वैसे वैसे हमारा अभ्यास योग पकता है, और अभ्यास योग के पकने से हमारा मन हमारी बुद्धि भगवान में ही जाकर के खड़ी हो जाती है, यह भक्ति की साधना। तो यह भक्ति की साधना यहां पर बता रहे हैं, तो यह इस क्रम से हमें इन सब श्लोकों को देखना है। तो यह बताने के बाद अब यहां पर हम देखते हैं कि सात श्लोकों में कुछ लक्षण गिनाए हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच, ये सारे श्लोक हैं। तो ऐसा लगता है कि इतना बता करके 12वें श्लोक के बाद सीधा यह शुरू कर दिया। क्या मतलब है? इसका तात्पर्य यही है कि ये भक्त के जीवन में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं और इन लक्षणों को देखने से लगेगा कि ये तो भाई ऐसे लक्षण हैं जो हमारी पहुंच से परे हैं। अब इतनी बातें यहां पर कह दी गईं, ऐसा लगता है कि मनुष्य को फिर पाषाण के समान जड़ हो जाना चाहिए, तभी उसमें इच्छा नहीं होगी, उसको हर्ष नहीं होगा, उसको भय नहीं होगा। इतनी सारी बातें बताई गई हैं। तो इस संदर्भ में मैं एक बात कहूं जो श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे। श्री राम कृष्ण देव का जीवन ऐसा भव्य सौध के समान था कि सचमुच में जब उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ऊंचाइयों को देख करके सिर चकराता है। और कुछ भक्तों ने उनसे कह ही दिया, महाराज आपका जीवन इतना ऊंचा है, जीवन रूपी इमारत इतनी ऊंची है, हम जब देखते हैं तो सिर चकराने लगता है, हम आपसे क्या सीख सकते हैं? आपने विवाह किया, पत्नी को साथ रखा, फिर भी आप दोनों के दोनों आजन्म अखंड ब्रह्मचारी रहे, कहीं पर भी देहबोध पैदा नहीं हुआ, और आपकी साधनाएं, आपकी सिद्धियां, महाराज इनको देख करके हम क्या सीख सकते हैं? ऐसा लगता है कि आप पहुंच से बहुत परे हैं। श्री रामकृष्ण ने जो उत्तर दिया था वह उत्तर यहां पर लागू होता है। उन्होंने हंसते हुए कहा था, सो तो ठीक, पर यह जीवन आदर्श स्थानीय रहा, यह तुम लोगों के लिए एक सांचा बना दिया गया, यह सांचा है। अपनी ओर दिखाते हुए वे कहते कि यह एक सांचा है, इसने सांचा बना दिया, यह आदर्श स्थानीय है। अब इस सांचे में तुम लोग अपनी शक्ति के अनुसार अपने जीवन को ढाल लो, जितना बन सके ढाल लो, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं 16 आने करूंगा तो तुम लोग एकाध आना करोगे तो करोगे, मैं जब 16 नाच नाचूंगा तो तुम लोग एकाध नाचोगे तो नाचोगे, यह श्री राम कृष्ण का उत्तर है। तो ठीक, गीता ने ये जो लक्षण बताए भक्त के, तम कहेंगे कि आदर्श स्थानीय है, यह आदर्श हमारा रहे, उसको हम नीचे नहीं लाएंगे, क्योंकि हम कमजोर हैं, दुर्बल हैं, उस आदर्श को नहीं पा सकते। इसका मतलब कि हम आदर्श को खींच करके नीचे ले आए, नहीं, आदर्श आदर्श की जगह रहेगा और हम जितना बन सकेगा उस आदर्श के आलोक में अपने जीवन को गढ़ेंगे, यह इसका तात्पर्य है। तो यहां जो लक्षण बताए गए हैं, जब हमको ऐसा लगता है कि ये लक्षण हमारी पहुंच से परे हैं तो हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, भाई हमारे लिए तो नहीं है, यही भाव हमारे मन में उठता है, छोड़ो ये सब क्या लिखा है भगवान ने, कि ये सब बातें क्या हो सकती हैं, मनुष्य के जीवन में ऐसी बातें आ सकती हैं, छोड़ो ये हमारे लिए नहीं है, और हम छोड़ देते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे लिए है, ठीक है अभी नहीं आ सकती ये बातें हमारे जीवन में, पर ऐसा समय आ सकता है जब प्रभु की कृपा से हमारे जीवन में भी ये लक्षण प्रकट हो सकते हैं। तो यहां पर जो है वह भक्ति के रास्ते चलने वाला जो सिद्ध पुरुष है उसके जीवन के लक्षण है। ऐसे ही कुछ लक्षण हमें मिलते हैं दूसरे अध्याय में, जिसको हम स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहते हैं। अर्जुन ने जहां पर पूछा था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, वह कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे वर्तन करता है, उसकी परिभाषा कैसी होगी स्थित प्रज्ञ पुरुष की, और तब उसके उत्तर में भगवान वह सारा कहते हैं। उन श्लोकों में भी लगभग इसी प्रकार का लक्षण है, मानो ऐसा ही दिखाई देता है वहां पर भी। वह ज्ञान से सिद्ध हुआ पुरुष और यह भक्ति से सिद्ध हुआ पुरुष, इसके जीवन में ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो उन लक्षणों की चर्चा हम कर लेते हैं। क्या कहा है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततम् योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः। दो श्लोकों में यहां पर कितने लक्षण दिखा दिए गए, और भगवान कहते हैं ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है, अब इसी प्रकार ये टेक चलेगी, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है, यही वे कहेंगे यह सच में प्रिय है, यह टेक है यहां पर। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, यह एक गुण। अद्वेष्टा द्वेष बुद्धि का अभाव, माने भक्त में द्वेष बुद्धि न रहे। यह द्वेष द्विष धातु से निकला है और द्विष का मतलब होता है दो तरफ जलाना, माने जो द्वेष करता है वह तो जलता ही है और जिसके प्रति द्वेष करता है उसको भी वह जलाता है। मैं द्वेष करता हूं अमुक से तो मैं तो जलता ही हूं और अमुक को भी मैं जलाता रहता हूं, यह तो हम सर्वत्र देखते हैं। तो इससे फिर भक्ति सधी कहां, भगवान में मन जाएगा कैसे? हर समय तो मैं द्वेषी का चिंतन करता रहता हूं जिससे मैं द्वेष करता हूं। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, लक्षणों को हम पढ़ते जाते हैं, सरल है अर्थ, अधिक बताने की आवश्यकता नहीं, केवल इतना ही इसमें समझना हमारे लिए आवश्यक है कि ये सारे लक्षण सिद्ध भक्त के हैं और ये ही मानो हमारी साधना भी बनते हैं। सिद्ध भक्त के जीवन में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हीं लक्षणों को लेकर के हम साधना भी कर सकते हैं, उनको पाने के लिए हमारे लिए साधना है, उनके लिए सिद्धि है कि जो गुण उनमें मानो अपने आप प्रकट हो गए उनको हम अभी पाने की चेष्टा करते हैं। यही तो साधना का नाम है कि साधना में मन उन गुणों में बैठता नहीं है, हम चेष्टा करते हैं, बारंबार अभ्यास करते हैं, मन भागता है, मन ठहरता नहीं है गुणों में, पर हम पुनः पुनः अभ्यास करते हैं। यह साधना का जीवन है।